ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ್ ಭಕ್ತ ಬೃಂದಕಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪ ಗೋಪಿನಾಥ ಶ್ಯಾಮ ಕುಂಡ ರಾಧಾ ಕುಂಡ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕಿ ಬ್ರಜಭೂಮಿ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ ಕಿ ನವದೀಪ ಮಂಡಲ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಯಾಪುರ ಕಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಧಾಮ ಕಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇಶ ಭದ್ರಾಜಿ ಕಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾರಾಸ ಬಿಹಾರಿ ಲಲಿತಾ ವಿಶಾಖ ಸಖಿ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಕಿ ತಾಯಿಗೌರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಜಯ ಸಮೇತ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗೌರಾಂಗ ಕಿ ಜಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯಸ್ಯ ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಗ್ರಂಥರಾಜ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಕಂದ 9 ಅಧ್ಯಾಯ 24 ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 57. ಆಗ ಸಂತಾವನ್ ಹಿ ಬೋಲ್ತೇ ಹೋ ನಾ, ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೇ ಹೋ ಆಪ್ ಲೋಗ್? ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ 57 ಆ ಹಿಂದಿ ಮೇ 57, ಮರಾಠಿ ಮೇ 57 ಹಿ, ಮರಾಠಿ ಮೇ 57. ಕೈ ಕೈ ಅಲಗ ಅಲಗ ಹೋತಾ ಹೈ ನಾ. ಯಸ್ಯ ಜನ್ಮನೋ ಹೇತು ಕರ್ಮಣೋ ವಾ ಮಹಿಪತೆ ಆತ್ಮಮಾಯಾಂ ವಿನೇಶಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುರಾತ್ಮನಃ ನ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಜನ್ಮನೋ ಹೇತು ಕರ್ಮಣೋ ವಾ ಮಹಿಪತೆ ಆತ್ಮಮಾಯಾಂ ವಿನೇಶಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುರಾತ್ಮನಃ ನ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಜನ್ಮನೋ ಹೇತು ಕರ್ಮಣಾ ವಾ ಮಹಿಪತೆ ಆತ್ಮಮಾಯಾಂ ವಿನೇಶಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುರಾತ್ಮನಃ ನ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಜನ್ಮನೋ ಹೇತು ಕರ್ಮಣೋ ವಾ ಮಹಿಪತೆ ಆತ್ಮಮಾಯಾಂ ವಿನೇಶಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುರಾತ್ಮನಃ. नहीं अस जन्म नो हेतु कर्मण वा मही पते आत्म मायाम विनेशस्य परस्य दष्टुरात्मनः। माता जी शब्दार्थ ना नहीं ही निसंदेह अस्य उनका भगवान का जन्मना जन्म लेना हेतु कोई कारण है कर्मणा या कर्म करने का वा अथवा महीपते हे राजा परीक्षित आत्ममायाम पतित आत्माओं के लिए उनका परम अनुग्रह बिना बिना रहित इससे परम नियंता का परस्य भगवान का जो भौतिक संसार से परे हैं दृष्टु परमात्मा का जो हर एक के कर्मों के साक्षी हैं आत्मनः हर एक के परमात्मा का अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की हे महाराज परीक्षित भगवान के प्राकट्य तिरोधान या कर्मों का एकमात्र कारण उनकी निजी इच्छा है कोई अन्य कारण नहीं है परमात्मा रूप में वे सर्वज्ञ हैं फलस्वरूप ऐसा कोई कारण नहीं जो उन्हें प्रभावित करता हो यहाँ तक कि सकाम कर्मों के फल भी नहीं तात्पर्य इस श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा एक सामान्य जीव का अंतर बताया गया है सामान्य जीव को अपने विगत कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहो पपत्तये जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र रूप से कभी भी प्रकट नहीं हो सकता प्रत्युत उसे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार माया द्वारा उस पर थोपे गए शरीर को स्वीकार करना होता है जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय श्लोक संख्या 61 में कहा गया है यंत्रारूढ़ा निमायया यह शरीर एक प्रकार का यंत्र है जिसे माया ने भगवान के निर्देशन में जीव को प्रदान किया है अतएव जीव को अपने कर्म के अनुसार माया द्वारा प्रदत्त शरीर को स्वीकार करना पड़ता है कोई स्वतंत्र रूप से यह नहीं कह सकता कि मुझे इस तरह या उस तरह का शरीर दिया जाए माया जो भी शरीर प्रदान करती है मनुष्य को वही स्वीकार करना पड़ता है ऐसी है सामान्य जीव की स्थिति किंतु जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे पतित आत्माओं पर अनुग्रह वश ऐसा करते हैं जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 और श्लोक संख्या 8 में भगवान कहते हैं परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे मैं साधु जनों का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता निस्संदेह उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता क्योंकि वे भगवान हैं हर व्यक्ति उनके अधीन है किंतु वे किसी अन्य के अधीन नहीं हैं जो मूर्ख लोग अज्ञान के कारण सोचते हैं कि वे कृष्ण के समकक्ष हैं या कृष्ण बन सकते हैं उनकी हर तरह से निंदा की जाती है कोई न तो कृष्ण के तुल्य है न उनसे बढ़कर इसीलिए उन्हें असमर्ध्वम कहा गया है विश्वकोश के अनुसार माया शब्द का प्रयोग मिथ्या अहंकार के रूप में किया जाता है और दया के रूप में भी सामान्य जीव जिस शरीर में प्रकट होता है वह उसके लिए एक प्रकार से दंड है जैसा कि श्री भगवान भगवद गीता के 7 अध्याय श्लोक 14 में कहते हैं दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मेरी इस दैवी शक्ति को जो 3 भौतिक गुणों से बनी है पार कर पाना दुष्कर है लेकिन जब श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो माया का अर्थ होता है भक्तों तथा पतित आत्माओं पर कृष्ण की कृपा या अनुग्रह। भगवान अपनी शक्ति से हर एक का भी उद्धार कर सकते हैं, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें अनेक सिद्धांत जो है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी होता है, उसके प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा गया सिद्धांत बलिया चीते न करो आलस, यहा हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है कि कृष्ण भी जन्म लेते हैं, लेकिन वो किसी के अधीन होकर जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन हम जन्म लेते हैं तो अपने कर्म फलों के अधीन होकर के, और कर्म फलों के द्वारा ही माया हमें देह देती है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। माया के द्वारा जो भी देह दिया जाता है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है, नहीं तो कोई अगर स्वतंत्र होता तो बहुत अच्छा शरीर धनी परिवार में बहुत योग्य कुल में जन्म लेता, कोई कुत्ता बिल्ली शुकर कुकर जोनी में नहीं जन्म लेता। इसलिए जन्म हमारे हाथ में नहीं है, जन्म जो है भगवान के हाथ में है। जीव के कर्मानुसार भगवान की अध्यक्षता में माया उसको देह प्रदान करती है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतु देहो उपपत्तये। कर्मणा दैव नेत्रेणा, दैव भगवान के दैवी प्रेरणा से, उनके अध्यक्षता से जीव को शरीर प्रदान किया जाता है, और उसके विगत कर्मों के आधार पर। तो जीव और भगवान में अंतर है कि जीव हमेशा अधीन है प्रकृति के, तीन गुणों में वो जन्म लेता है, माया उसको देह प्रदान करती है, और माया भगवान के द्वारा संचालित होती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति भगवान के द्वारा कार्य करती है, भगवान के अधीन में, भगवान के निर्देशन में। तो संसार में बद्ध जीव जब अनेक पापमय क्रियाओं में रत रहता है तो उन पापमय क्रियाओं के द्वारा उसको निम्न देहों में भेजा जाता है, बलात् उसको बलपूर्वक माया उसको निम्न योनियों में भेज देती है। जैसा कहा गया है कृष्ण भूलिया जीव भोग वंछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, सही है ना। और एक और इसी तरह का कि कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। माया तारे, माया उसको इस संसार में भिन्न भिन्न जोनियों में डालकर दुख देती है। कृष्ण भूली से ही जीव, हम अनादिर बहिर्मुख हैं, कृष्ण को भूले हैं। बद्धावस्था में जीव भगवान को भूल जाता है, और भूल करके अनेक कार्यों में, माई कार्यों में अपने को स्वामी मान करके प्रकृति को अपना आधिपत्य जमाता है कि मैं मालिक हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं बनाया हूँ, यह हमारा साम्राज्य है, इसका मैं कारण हूँ। कोई बोलता है किसका है, तो मैं बनाया हूँ, मैं कहता है कि किसके जमीन है तो मैं खरीदा हूँ, बोलता है ना। ये कौन मंदिर सफाई कर किया है, तो बोलते हैं कि हम किए हैं, बताए ना। इसमें भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हम किए हैं, हम नहीं रहते तो सफाई नहीं हो पाता। अच्छा कि संयोग से हम थे। हम नहीं होते तो जन्माष्टमी उत्सव ही नहीं होता है। क्या होता है ना, कभी कभी हम भक्तों में भी होता है कि हम किए हैं, हम, लेकिन हम नहीं करते हैं, हमारे पीछे कोई और कराने वाला है। परम कारण भगवान है जो सारे जीवों को जन्म देने का, उसके अनुसार सुविधा देने का, उसे कार्य कराने का, भगवान ही माया के द्वारा भिन्न भिन्न जोनियों में जीव को भेजकर भिन्न भिन्न कार्य संपन्न कराते हैं। इसलिए भगवान ही सब कुछ के कारण है। हम अधीन हैं, जीव अधीन है और भगवान जो है स्वतंत्र है। जीव में भगवान में अंतर है कि भगवान परम स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, और जीव जो है पराधीन है, अधीन है। हम प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा शरीर जो दिया जाता है, माइक शरीर, जो पंच महाभूत, पंच तन मात्रा, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये भौतिक देह में हम बद्ध हैं। इसमें भी तीन रस्सी से बंधे हैं, तीन जंजीर से बंधे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन श्रृंखला है। एक सोने की श्रृंखला है, एक सोने की श्रृंखला है, एक ताम्र श्रृंखला है। मान लीजिए कोई सोने के जंजीर में बंधा है तो अपने को गौरवान्वित करता है कि मैं सोने के चैन में बंधा हूं, लेकिन बंधन तो है। बंधन तीनों परिस्थिति में है, सत्वगुण में भी बंधन है, भले वो सोने के चैन में बांध दिया जाए किसी को, लेकिन बंधन का ही काम करता है। किसी को लोहे के जंजीर में बांध दिया तो भी बंधन है, या किसी को तांबे के चैन में बांध दिया गया है। तो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं भौतिक संसार में, वहां बंधन बनता है, और वही बंधन जो है माया के द्वारा दिया जाता है। अब माया कौन है? तो भगवान के द्वारा कार्य करती है, भगवान ने उसको ये किया है बद्ध जीवों को दंड देने के लिए। तो जो हम जन्म लेते हैं वो जन्म दंड है, हमें दंड दिया जाता है। भिन्न भिन्न जोनियों में, भिन्न भिन्न जोनियों में भिन्न भिन्न प्रकार के देह धारण करके माया हमें दंड देती है। चाहे इस संसार में कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त कर ले या बहुत उच्च कुल में जन्म ले ले, तो वहां भी बंधन होता है। सत्वगुण में ब्राह्मण का जन्म होता है, रजोगुण में क्षत्रिय में जन्म लेता है, क्षत्रिय वैश्य रजोगुण प्रधान होते हैं, और शूद्र जो है तमोगुण प्रधान होते हैं, ब्राह्मण सत्वगुण प्रधान होता है। तो वहां जो ब्राह्मण कुल में जन्म है वहां भी सत्वगुण का बंधन है, वहां सोने के चैन में बंधा हुआ है, सोने के मोटे चैन में बांध दिया जाए हाथ, आप कितना देर तक खुशी मनाइएगा? कितना देर तक? बंधन तो बंधन ही है, लेकिन भगवान पर कोई बंधन नहीं। भगवान परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, उनके ऊपर और कोई नहीं है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। इसलिए भगवान को परम धाम कहा गया है, तद धाम परम मम। भगवान और भगवान का धाम दोनों अभिन्न है, इसलिए भगवान को भी परम धाम कहा, परम धामम, परम ब्रह्म, परम धामम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। इसलिए भगवान को हमेशा इसी से घोषित किया, भगवान परम है, परम स्वतंत्र हैं, परम शक्तिशाली हैं, परम ऐसे, उनमें हर चीज में परम परम लगाया है। और जीव को हमेशा ये कहा गया है कि जीव जो है अणु है, क्षुद्र है। तो ये जब कोई जान जाता है, समझ जाता है कि हम वास्तव में अधीन हैं और भगवान परम स्वतंत्र हैं, और उनके द्वारा हम निर्देशित, माया जो निर्देशित, माया के निर्देशन में हम कार्य कर रहे हैं, तो इससे मुक्ति कब होगी? जब जीव भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करता है और भगवान को अपना स्वामी मानकर सेवक के रूप में कार्य करता है कि हम भगवान के दास हैं, दासोस्मि, दासों हम। जब कोई यह मानता है, लेकिन यह सोचता कि नहीं, मैं स्वामी हूँ, सो हम बोलते हैं, मैं सो हम, मैं भी वही हूँ, शिवो हम। एक आदमी था तो बोलता था शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम। देवकी नंदन प्रभु प्रोग्राम कराए थे महाराज का, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रोग्राम कराए थे प्रेम कुटीर में, तो वो निरीश्वरवादी हैं सर, तो वहाँ हम लोग भी गए थे, देव के वहाँ प्रभु भी थे। तो एक बूढ़ा आदमी था, तो शिवोहम खूब जपता था और बहुत खांसता था, बूढ़ा आदमी था। तो महाराज को प्रणाम करने के लिए आया, तो महाराज कहे नहीं नहीं आप प्रणाम करिए, आप तो शिव जी हैं, शिवोहम। तो महाराज कहे आप शिव जी हैं, आप प्रणाम मत करिए। तो आदमी हक्का बक्का रह गया कि ये क्या है। वो मीनिंग नहीं जानता था शिवोहम का, वो सोचता था कोई वैदिक मंत्र है और शिवोहम जपता था, जैसे हम लोग वहां जपते हैं। तो महाराज कहे कि आप तो शिव जी हैं, आप मत प्रणाम करिए। तो आदमी थोड़ा ये हो गया, सकपका गया। तो बाद में कहा कि महाराज जी शिव जी, मैं शिव जी कैसे हूँ। तब तो महाराज जब बताए इसका मीनिंग, तो वो कहा कि अरे महाराज मैं तो समझता कि कोई मंत्र है। महाराज कहे ये मंत्र नहीं, आप यह करें कि मैं शिव जी हूँ, शिवोहम सोहम। सोहम मतलब बोलते मैं भी भगवान का अंश हूँ, तो मैं भी वही हूँ। बोलते ना कि भगवान कहते ना कि जीव मेरा अंश है, ममई वांशो। तो भगवान का अंश है तो हम भी भगवान हैं, ये आधार पर लोग बोलते हैं। तो बाद में वो समझ गया, तो कहा कि मैं तो सोचता था कोई मंत्र है। तो इस तरह से समझना, सुनना और समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक आदमी को जूता काट दिया था, नया नया जूता जब आदमी लेता है तो कभी कभी पांव में काट देता है, एड़ी के पीछे। हम लोग भी बचपन में, अभी भी नया जूता लेने पर कभी कभी काट देता है। आप लोगों को काटा है कि नहीं जूता है? तो जूता एक आदमी को काट दिया था, अपन नया जूता लिया था, पीछे का भाग कट गया था, तो बहुत दर्द हो रहा था उसको, हो रहा हो गया। तो डॉक्टर के पास गया, तो कहा डॉक्टर साहब मुझे जूता काट दिया है, कुछ दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर जो है इंजेक्शन निकाल करके कहा कि 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो आदमी बोला 14 इंजेक्शन क्यों? अरे 14 इंजेक्शन लगता ही है इसमें, पहले 14 इंजेक्शन लगता था। तो कहा कि 14 इंजेक्शन लगता है, जूता काट दिया है। तो बोला जूता काटा है, मैं तो समझा कि कुत्ता काटा है। वो आदमी सुना नहीं डॉक्टर, वो समझ गया कि कुत्ता काटा है। अब कुत्ते का इंजेक्शन जो है लगाने के लिए तैयारी कर रहा था, पहले 14 इंजेक्शन लगाने पर, अब तो एक में हो जाता है। तो वो कहा कि मैं समझा कि कुत्ता काटा है, जूता काटने वाले पेशेंट बहुत कम होते हैं। आज जूता काट भी ले तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है। आपके पास कोई पेशेंट नहीं आया ना राशि पर? राष्ट्रीय प्रभु के पास भी कोई आज तक जूता का पेशेंट नहीं आया कि जूता काट दिया है। तो कोई बहुत रेयर मतलब नई घटना थी कि जूता काटने का एक पेशेंट आया था। वो आदमी समझा कि कुत्ता काटा है, जूता और कुत्ता का बहुत संबंध है, जूता और कुत्ता में बहुत संप्राय, जूता कुत्ता लेकर जाते भी हैं। मॉरिशस में हम लोग थे तो बाहर ही जूता रखे थे, तो एक दिन कुत्ता ले गया, एक पांव का कुत्ता ले गया, एक छोड़ दिया। मैं कहा कि कुत्ता जूता ले गया, कुत्ता और जूता कुत्ते ले जाते हैं। तो डॉक्टर को कहा कि अरे भाई मुझे जूता काटा है, कुत्ता नहीं काटा है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, अगर आप नहीं एक्सप्लेन करता मैं तो आप तो मुझे मार देते कुत्ता का इंजेक्शन दे करके। उसी तरह सिद्धांत में भी बड़ा सावधानी से सुनना चाहिए, नहीं तो भूल हो जाएगी तो बहुत बड़ाई हो जाता है। नहीं तो आप ही बोलेंगे सीओ हम, शो हम, ईश्वरो हम, सेल बोलता है ना। कोई आदमी गड़बड़ सुन लेता है तो बोलता है कि मैं भी भगवान हूं। तो आदमी जैसे सीओ हम जपता था, जब महाराज ने उसको स्पष्ट किया, व्याख्या किया, तो एकदम समझ गया। तो उसी तरह सिद्धांत बलिया चीते न करो आलस, सिद्धांत को समझना चाहिए कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम एग्जाम लिख सकते हैं। एग्जाम नहीं बोलते हैं ना परीक्षक को, परीक्षार्थी को क्या बोलते हैं जो परीक्षा देने जाता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एग्जामिनर, एग्जामिनर ना, एग्जामिनी मतलब जो जांच करता है, तो जो हम एग्जामिनर हो सकते हैं, एग्जामिनी नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए हम कोई कंपटीशन में बैठे हैं तो एग्जामिनर हैं, कॉपी लिख सकते हैं, लिख करके नंबर भी नहीं दे सकते हैं। तो नंबर अगर देने को मिलेगा तो हर आदमी 100% पास होगा। तो हम केवल एग्जाम लिख सकते हैं, मार्क्स देने के लिए कोई और होता है, कॉपी चेक करने वाला कोई और होता है। आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पढ़ करके एक एक आंसर लिखते हैं, फिर आंसर लिखने के बाद कॉपी लौटा देते हैं जो एग्जाम लेने वाला होता है, वो बाद में आपका कॉपी चेक करता है, वो अनुसार नंबर देता है। उसी तरह हमारे हर कार्यों के साक्षी भगवान हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके साक्षी भगवान हैं, और उस अनुसार वो फल देते हैं कि यहाँ ये आदमी को कौन सा शरीर दिया जाए। जो मूर्ख लोग अज्ञान के कारण सोचते हैं कि वे कृष्ण के समकक्ष हैं या कृष्ण बन सकते हैं, उनकी हर तरह से निंदा की जाती है। कोई न तो कृष्ण के तुल्य है न उनसे बढ़कर, इसीलिए उन्हें अस्मोर्ध्व कहा गया है। विश्वकोश के अनुसार माया शब्द का प्रयोग मिथ्या अहंकार के रूप में किया जाता है और दया के रूप में भी। जब जीव यह सोचता है कि मैं भगवान हूं तो वो मिथ्या अहंकार के चलते सोचता है। तो यहाँ प्रभुपाल लिखते हैं विश्व कोश के अनुसार माया का दो अर्थ होता है, दया भी। लोग बोलते हैं इसके अंदर माया नहीं है, माया का दया भी होता है। जिसमें दया होती है उसको बोलते हैं बहुत माया है। और माया का मतलब मिथ्या अहंकार भी। मिथ्या अहंकार, मिथ्या माने झूठा, अहंकार मतलब अहम आकार, अपने शरीर को ही कोई मान लेता है, यही हमारा स्वरूप है। जीव जब यह समझ ले कि हमारा यही वास्तविक आकार है, जो भौतिक शरीर है इसी को मान लेता कि मैं देह हूं, देह को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेना कि यही हमारा वास्तविक आकार है। हम देह के प्रति आत्मबुद्धि कर लेते हैं, देहात्म बुद्धि, देह में ही आत्मबुद्धि कर लेना देहात्म बुद्धि है, उसी को मिथ्या अहंकार कहते हैं। वास्तव में देह जो है ये भी इसका एक आकार है, स्वरूप है, और इसके अंदर आत्मा है, देह में आत्मा है। दोनों का भिन्न भिन्न रूप है, दोनों का भिन्न भिन्न स्थिति है। एक नश्वर है और एक अमर है, एक चिन्मय है और एक जो है जड़मय है। एक चिन्मय तत्व से है, एक जड़ तत्व से बना है। एक चैतन्य है और एक चैतन्य शून्य है। जैसे आत्मा के जाने के बाद शरीर चैतन्य नहीं रहता है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा के चलते शरीर में चेतना है। आत्मा है तब शरीर में चेतना है। शरीर में जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उसमें जो देखने की शक्ति है, सुनने की, खाने की, यह चेतना, यह चैतन्य आत्मा की उपस्थिति से है। तो आत्मा चैतन्य है और शरीर जो है चैतन्य शून्य है। चैतन्य माने चेतना, चेतना विहीन है। आत्मा एक शरीर के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करता है, लेकिन यह शरीर जो है फिर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, मिट्टी मिट्टी में चला जाता है, अग्नि अग्नि में विलीन हो जाती है। जब भी पंच तत्व है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्व से शरीर बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा, ये शरीर अधम है। अधम क्यों कहा गया है? कि शरीर के द्वारा हम भौतिक भोग को भोगते हैं, यह शरीर से पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, ये शरीर के द्वारा हमें बंधन प्राप्त होता है। शरीर, भौतिक शरीर ही कारण है ना फिर दूसरा बंधन का। ये शरीर में जब तक है, भौतिक शरीर में, तब तक बंधन जो है, तब तक हम जेल में बंद हैं। भौतिक जगत को कारागार कहा गया है। कारागार में माया जो है, माया सृजे कारागार, दुर्गा जो है इस दुर्ग को जेल के तरह बनाई है। हम जेल में हैं, हम सभी जेल में हैं, क्योंकि इसको दुर्गा जी ने जेलखाना के रूप में बनाया है और सारे बद्ध जीव इस जेल के अंदर हैं। क्यों जेल में हैं? कि हम भगवान को भूल करके स्वयं को ही इसका अधिपति मान लेते हैं कि मैं मालिक हूँ, मैं ही इसका कारण हूँ, मैं ही इस भौतिक जगत का भोक्ता हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, इसका मुझे हक है, मुझे अधिकार है, मुझे प्राप्त होना चाहिए, मुझे इसका भोग करना चाहिए। भगवान से जिसका कोई संबंध नहीं है, भगवान के प्रति जिसका कोई सरोकार नहीं है और भौतिक क्रियाओं में ही वो सुख और दुख को भोग रहा है, उसी में अहम ममेति करके अपने को गौरवान्वित होता है, तो ऐसे जीव जो है इस जेल में पड़ा रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, वो अवतार लेने भी स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं। भगवान आते हैं तो यदा यदा ही धर्म से क्षयो वृद्धिश्च पाप मनः, यदा यदा ही धर्म से, जब जब भी धर्म की हानि होती है, क्षयो वृद्धि, वृद्धिश्च पाप मनः, अधर्म से क्षयो अवृद्धिश्च पाप मनः, धर्म का अधर्म का क्षय करते हैं और यदा यदा ही धर्म से, यदा यदा ही धर्म से क्षयो वृद्धिश्च पाप मनः, जब अधर्म बढ़ जाता है, जब धर्म की हानि होती है, क्षय होता है और पाप बढ़ जाता है, तब भगवान आते हैं। और इसी तरह गीता में भी श्लोक भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्य हम। तो सेम वैसा ही श्लोक सुखदेव गोस्वामी इसके पीछे श्लोक में कहें, यदा यदा ही धर्म से क्षयो, जब जब धर्म का क्षय होता है, यदा यदा ही धर्म से क्षयो, क्षयो माने क्षय होता है, और वृद्धिश्च पाप मनः, और पाप का वृद्धि होता है, तदा तु भगवानी स, तब भगवान जो है आत्मानम सृजते हरि, तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। यदा तु, तदा तु, तदा तु भगवान ईशम, भगवान फिर ईशम कहा गया है। भगवान मतलब जो षडेश्वर परिपूर्ण है, जो ईश्वर है सारे जीवात्माओं के, वो भगवान स्वयं अपनी इच्छा से सृजते हरि आत्मानम, स्वयं अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं और कोई कारण नहीं है। कारण है तो यह है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का क्षय होने लगता है, धर्मस्य क्षयो अवृद्धिश्च पाप मना, पाप बहुत वृद्धि माने बढ़ जाता है, तदा तुम, तब जो है भगवान ईशम आत्मानम सृजते हरि, तब भगवान अपने को प्रकट करते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी कहे कि भगवान जब कृष्ण अवतार लिए, अवतार नहीं लिए, स्वयं अवतारी हैं, भगवान स्वयं अवतारी हैं, इसलिए गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष हैं, अन्य जो है उनके अंश और कला हैं, भगवान स्वयं हैं, स्वयं सब अवतारों के जो अवतारी हैं। तो देवकी के गर्भ में आए, देवकी सुरसेन की पुत्री देवकी के गर्भ में भगवान आए। देवक की पुत्री देवक महाराज की 7 पुत्रियां थीं और इनके पति वसुदेव सुरसेन के पुत्र थे। तो देवक की पुत्री देवकी के गर्भ में भगवान शिवम आए। देवकी 8 पुत्रों को जन्म दी और एक पुत्री। तो 8 में सबका नाम पीछे के श्लोक में दिया गया है। वसुदेव के वीरियम देवरक्षिता के गर्भ से अलग है, सहदेवा से। देवकी वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी 8 योग्य पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कीर्तिमान सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र तथा शेषावतार संकर्षण सम्मिलित हैं। 8वें पुत्र साक्षात स्वयं कृष्ण थे और परम सौभाग्यवती सुभद्रा एकमात्र कन्या तुम्हारी दादी थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तुम्हारी दादी जो है एकमात्र कन्या थी सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के परीक्षित। सुभद्रा जो है कृष्ण की बहन है, देवकी की पुत्री हैं। देवकी के 8 पुत्र हैं, जिसमें संकर्षण भी हैं, बलराम जी की 2 माताएं हैं। प्रथम बलराम जी देवकी के गर्भ में आए, इसलिए देवकी के भी पुत्र हैं और रोहिणी के भी पुत्र हैं, 2 माताएं हैं। तो इस पर परीक्षित महाराज को आश्चर्य हुआ, बड़ा संदेह हुआ कि ये 2 माताएं कैसे हो गई, कैसे 2 माताएं, कोई एक ही माँ के गर्भ में रह सकता है ना। कि बलराम जी 2 के गर्भ में थे, प्रथम देवकी के गर्भ में, देवकी के गर्भ में थे तो भगवान ने जोग माया को आदेश दिया कि गच्छ देवी ब्रजे तिष्ठम गौ गोभीर अलंकृतम। भगवान कृष्ण जोग माया को आदेश दिए कि हे देवी ब्रज में गच्छ जाओ और देवकी के गर्भ में मेरा ही अंश है, मैं उनको ट्रांसफर कर दो रोहिणी के गर्भ में। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो ओम्ब ट्रांसप्लांट करना था, ओम्ब को गर्भ को दूसरे जगह स्थानांतरित करना था। कितना बड़ा मेडिकल साइंस है। जैसे लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो गर्भ को ही ट्रांसफर करना था, तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर चाहिए। यही बहुत एक्सपीरियंस होगा वही ना, गर्भ को एक गर्भ एक जगह से दूसरे जगह कि तो बहुत बड़ा फीस होगा, बहुत फीस दिया। तो भगवान कहे कि एक कार्य के चलते तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होगा, तुम्हारी बहुत पूजा होगी भौतिक जगत में। भौतिक जगत में तो धूप दीप से लोग पूजा करेंगे, तुम्हारे बहुत नाम होंगे, नामकरण भी भगवान कृष्ण कर दिए। ऐसे यहाँ बहुत नाम है ना देवी के, कुंदा है, नारायणी है, वैष्णवी है, शारदा है, भद्रा है, चंडिका है। जैसे मुंबई में मुंबा देवी हैं, कलकत्ता में महाकाली हैं, कटक में भद्रा हैं, वाराणसी में अन्नपूर्णा हैं, ब्रज में अन्नपूर्णा हैं, अनेक नाम हैं। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी हैं, नारायणी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाधा स्वाधा नमस्ते। तो भगवान नामकरण की तुम्हारी अनेक नामों से पूजा करेंगे लोग और लोग मनुष्यों के मनोकामना को पूर्ण करोगी। भगवान ने फीस चुका दिया कि जाओ तुम्हारा बहुत नाम होगा। और बलराम जी का नामकरण भी कर दिए कि खींच कर ले जाने से उनका नाम संकर्षण होगा, बलवान बहुत होंगे इसलिए उनका नाम बलराम होगा, हल जिनका आयुध होगा हलायुध होंगे, रोहिणी के गर्भ में जाएंगे तो रोहिणी नंदन, रेवती से विवाह हुआ तो रेवती नंदन, हलधर हलायुध, अनेक नामकरण भी। इसे सिद्ध होता कि कृष्ण बड़े हैं, अपने बड़े भाई का नामकरण कर रहे हैं कृष्ण कि उनका ये नाम होगा। तो आचार्य जी लोग लिखते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण ही बड़े हैं, बल के भी आश्रय कृष्ण ही है। बलम बलवता चाहम, बलवानों के भी बल मतलब बलराम के भी बल कृष्ण है, इसलिए बलराम जी भी कृष्ण के ऊपर ऐसे आश्रित हैं। कृष्ण बलराम मंदिर में बलराम जी कृष्ण पर ऐसे आश्रित है ना, अपने हाथ टेके हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बल भी कृष्ण पर आश्रित है, मतलब कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं, उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी कहे कि कृष्ण स्वयं भगवान, उनके अंश जो है प्रथम अंश बलराम जी देवकी के गर्भ में गए, इसलिए देवकी के पुत्र बलराम जी भी हैं, से संकर्षण भी, इसलिए दो माताएं हैं। कुतो देहांतरम बिना, बिना देहांतरण किए कैसे दो माताएं हो गई। परीक्षित महाराज कि बिना कोई देह बदल करना, एक देह छोड़ेगा तब ना दूसरे देह में जाएगा, दूसरे गर्भ में जाएगा, तो उसी देह से कैसे दो माताएं हो गई। तो पूरा इतिहास बताए सुखदेव गोस्वामी कि जोग माया उनको भगवान के आदेश से रोहिणी के घर में स्थापित की, इसलिए दोनों माताएं हैं, दो माताएं हैं। अगर महाराज कह रहे थे, एक बार महाराज स्वप्न में जब बीमार थे तो स्वप्न देख रहे थे, परम पूज राधा गोविंद महाराज, तो स्वप्न में कृष्ण बलराम आए, बोले हम लोग का पासपोर्ट बनवा दीजिए, हम लोग ही अमेरिका जाएंगे, तो चलकर हम लोग का विटनेस बन जाइए, पासपोर्ट का जो ऑफिसर होता है। तो स्वप्न में ही महाराज गए, तो कहे कि चौबे जी थे इन लोग का भाई, पासपोर्ट का एक करा दीजिए। तो कहे कि कैसे कहे, कहता है हमारी दो माताएं हैं, ये करा कि हमारे दो माँ हैं, दो बाप हैं, वसुदेव जी भी हैं, नंद महाराज भी हैं। या ये लड़का कहता है कि हमारी देवकी भी माँ है और रोहिणी भी माँ है, दो दो एड्रेस कैसे चलेगा, इसमें पासपोर्ट कैसे बन सकता है। दो माता पिता का नाम अगर आप लिखेंगे तो आपका कुछ कागज बनेगा, नहीं बनेगा, ये कहीं नाम दिया जाता है ना, माता का नाम क्या है तो एक नाम देंगे, पिता का नाम का एक नाम दे, दो नाम देंगे तो नहीं बन सकता है। तो बलराम जी कहे कि हमारी दो माताएं हैं, माँ का नाम भी लिखा जाता है पासपोर्ट के लिए। तो पासपोर्ट के लिए जब फार्म में भरना तो दो नाम भाई, देवकी भी और रोहिणी भी, और कृष्ण भी लिखे दो माँ, देवकी जन्म की माता है और यशोदा पोषक माता है, पालन करने तो चल जाएगा। तो भगवान कहे कि तुम्हारी दादी आठ पुत्र हुए और एक पुत्री सुभद्रा जो तुम्हारी दादी है। दादी मतलब ग्रैंड मदर। तो ये यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब जब धर्म का क्षय होता है, यदा यदा ही धर्म से क्षयो वृद्धिश्च पापमनः, जब भी अधर्म बढ़ जाता है और जब भी जब धर्म का क्षय होने लगता है, धर्म नष्ट हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान आते हैं और इस तरह से साधुओं की रक्षा करते हैं, सज्जनों की, और दुष्टों का दलन करते हैं, ये उद्देश्य है। और फिर भगवान अपने मंजुल महिमा को विस्तार करते हैं, अपनी लीला का विस्तार करते हैं। भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, जन्म लेकर जन्म लीला करते हैं, बाल लीला करते हैं, पौगंड लीला करते हैं, कैशोर लीला, अनेक लीलाएं करके जीव को अपने माधुर्य लीलाओं से अपनी आकृष्ट करते हैं। जब जीव भगवान के माधुर्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट होता है तो उसका बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है। आचार्य लोग लिखते हैं भगवान का दो कारण है, एक गौण कारण है, ये मुख्य कारण नहीं है। भगवान अपने धाम से भी असुरों को मार सकते हैं, वो तो आंख ऐसे गिराएंगे तो पूरा अनंत ब्रह्मांड का प्रलय हो सकता है, भगवान के दृष्टि से ही सारा प्रलय हो जाता है। तो असुर लोगों को मारने के लिए क्या जरूरी है जन्म लेना, वहीं से सबको मार सकते हैं, वहीं से एक एटॉमिक बम से सबको धराशायी कर सकते हैं। आज वैज्ञानिक युग में एक बम से सबको मार सकते हैं, तो भगवान के पास ऐसा नहीं है क्या? भगवान तो सब वैज्ञानिकों के भी वैज्ञानिक हैं, तो भगवान को जन्म लेने की क्या जरूरत है? भगवान का मुख्य उद्देश्य जन्म लेते हैं अपने भक्तों के साथ लीला का संवर्धन करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं, अबद्ध जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं भगवान। असुरों को मारना मुख्य कारण नहीं है। यदा यदा ही धर्म से अगला निर्भवती भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मान सृजाम्य हम, ये मुख्य कारण नहीं है। जब जब धर्म का क्षय होता है और अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान आते हैं, लेकिन यहां करके मुख्य कार्य क्या करते हैं? भक्तों को अपनी मंजुल महिमा से आनंद प्रदान करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और बद्ध जीवों पर विशेष अनुग्रह करके अपने लीला माधुरी, गुण माधुरी, राम माधुरी, रूप माधुरी, ये माधुर्य से श्री राधिका माधव योर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। भगवान का क्या विशेष माधुर्य है? माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, इसके द्वारा बद्ध उसके बंधन को समाप्त करते हैं और भक्तों को आनंद का उद्रेक करते हैं उसके हृदय में, ये कारण है। तो भगवान कहे किस तरह से भगवान देवकी के गर्भ में आए और क्रमशः आठ वसु के अन्य वसु छह वसु और दो में स्वयं एक भगवान थे और एक स्वयं भगवान के विस्तार बलराम जी थे। छह वसु देवकी के गर्भ में आए थे और सातवें में स्वयं कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम जी आए सातवें में, और आठवें में स्वयं कृष्ण आए, और एक कन्या हुई सुभद्रा जो भगवान की बहन थी जिसका विवाह जो है अर्जुन से हुआ, तुम्हारे दादा से विवाह हुआ, अर्जुन दादा थे ना परीक्षित के, इस नाते सुभद्रा तुम्हारी दादी हुई और वो दादी जो है तुम्हारे पिता की अभिमन्यु की माता थी, अभिमन्यु की माँ थी ना सुभद्रा, सुभद्रा के गर्भ में थे। जब चक्रव्यूह भेदन कर रहे थे अभिमन्यु तो उस समय सुभद्रा गर्भवती थी, गर्भ में परीक्षित थे, तभी चक्रव्यूह भेदन में अभिमन्यु मार दिए गए, तो परीक्षित गर्भ में थे। महाभारत के में हम देखते हैं कि बाद में अश्वत्थामा उस गर्भ को पांडवों के अंतिम धरोहर परीक्षित थे, ब्रह्मास्त्र से उनको भी मारना चाहा था लेकिन भगवान ने रक्षा किया था परीक्षित को। परीक्षित जो है गर्भ में ही भगवान का दर्शन किए थे। महाराज एक बार कह रहे थे प्रथम मंगल आरती उन्होंने गर्भ में ही किया था। परीक्षित इतने महान थे कि गर्भ में ही भगवान का दर्शन किए थे, इसलिए परीक्षित को कह रहे हैं कि तुम्हारी दादी थी सुभद्रा जिसके गर्भ में जिसके गर्भ में जो है तुम्हारे पिता आए अभिमन्यु सौभद्रेय, अभिमन्यु को सभद्रे कहा जाता है। तो अभिमन्यु जब मर गए तो वो सती नहीं हुई सुभद्रा, सुभद्रा सती नहीं हुई कि गर्भ में परिचित थे।
गड़बड़ हो रहा है क्या
है? उतरा ना? हाँ मैं गड़बड़ कर दू। सुभद्रा के अभिमन्यु की पत्नी उतरा के गर्भ में, हाँ तो यही गड़बड़ हो रहा था, हंस रहा था तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, अब बताना चाहिए था। तो उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु थे और अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र थे, तो सुभद्रा इनकी परीक्षित की दादी थी ना। तो जब उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित तो उत्तरा सती नहीं हुई। अभिमन्यु मरने का जब पति मर जाता है तो पत्नी सती हो जाती थी, तो शास्त्र का नियम है कि अगर बच्चे छोटे हैं या स्त्री के गर्भ में कोई शिशु है तो स्त्रियां सती नहीं होती थी, इसलिए उत्तरा सती नहीं हुई थी। अभिमन्यु के मरने के बाद उत्तरा सती नहीं हुई कि उत्तरा गर्भ में परीक्षित महाराज थे, तो वही आगे चल करके ब्रह्मास्त्र अपमान का बदला लेने के लिए जब अभिमन्यु को पकड़ कर ले आए थे, जब द्रौपदी के 5 पुत्रों का अश्वत्थामा वध कर दिया था तो अरेस्ट करके ले आए थे द्रौपदी के सामने। पशु को जैसे रस्सी में बांध कर लाया जाता है वैसे अर्जुन अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को रस्सी में बांध करके द्रौपदी के सामने रख दिए, बोलो क्या करना है, मरना है तो कहो, मार देते हैं। तो अंतिम दया आ गई, द्रौपदी कही कि नहीं नहीं गुरु पुत्र है, इनको नहीं मारना चाहिए, मुच्यताम छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिया गया। उसका ब्रह्म तेज जो मणि था वो निकाल लिए, शिखा काट दिए, छोड़ दिए। तो इस अपमान का बदला लेने के लिए फिर ब्रह्मास्त्र चलाया, 5 पांडवों को मारने के लिए। फिर पांडवों के धरोहर परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में थे उस गर्भ को भी नष्ट करना चाहा कि पूरा पूरा वंश ही निर्मूल नष्ट कर देना है। तो कुरुवंशी पांडुवंशी के वही अंतिम दोनों परिवार के अंतिम धरोहर परीक्षित गर्भ में थे, जो भगवान गर्भ में रक्षा किए थे, वही भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है जो सबके मूल कारण है, सारे सृष्टि के सारे अवतारों के वही उत्स हैं, उद्गम हैं, वही परम भगवान हैं, आदि भगवान हैं, जो तुम्हारे दादा अर्जुन के सारथी बनकर महाभारत में तुम्हारे दादाओं को विजय दिलाए और युधिष्ठिर महाराज को राज प्रदान किए। तो परीक्षित महाराज को और सुनने की इच्छा हो रही थी, दोनों वंशों का वर्णन करे, सोम वंश और सूर्य, उसमें भी चंद्र वंश में भगवान कृष्ण के जन्म कर्म की लीलाओं को परीक्षित महाराज विशेष रूप से सुनने के लिए हो रहे थे कि हमारे दादाओं के जो बहुत शुभ चिंतक थे, जिनके सारथी बने, वो ब्रज में मथुरा में जन्म लेकर के और क्या क्या किए, और विस्तार से सुनना चाहते थे कि मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में गए तो वहां क्या किए। उनकी उत्कंठा बढ़ रही थी कि कृष्ण का जो संबंध है उनके परिवार से, कृष्ण का दोनों परिवारों से, उधर पृष्णी वंश और क्या बोलते हैं भोज वंश और पृष्णी वंश, यदु वंश से भी और इधर भोज वंश से भी दोनों से संबंध है, पृष्णी वंशी भी हैं और भोज वंशी भी हैं। तो भगवान के उन लीलाओं को सुनने के लिए और उत्कंठित हो रहे हैं परीक्षित महाराज, तब वही आगे और आप सुनेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, अब गलती के लिए सुधार किए, धन्यवाद। हंस रहा था, बोलना चाहिए था, सुधार करना चाहिए था, बड़ा आनंद ले रहा था आप। कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास दिया। ये बंदी गृह में जो भगवान कृष्ण आए और यशोदा कृष्ण, मथुरेश कृष्ण, द्वारिका कृष्ण, इसमें थोड़ा मैंने वही कृष्ण मैंने उसका विभेद क्या है सब बता दीजिए।
भगवान के विषय में से कहा जाता है कि एको अहम बहुश्यामी द्वितीयो नास्ति, भगवान हमेशा सिंगुलर नंबर में रहते हैं, एक वचन, एको हम एक ही पुरुष हैं, लेकिन भिन्न भिन्न लीला के लिए भिन्न भिन्न रूपों में भी अपने को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फिर भी एको हम एक हैं, दो नहीं हैं। जैसे आचार्य लोग लिखे हैं कि कृष्ण दो जगह प्रकट हुए थे, देवकी के यहाँ भी और यशोदा के यहाँ भी। देवकी के नंदन जो देवकी के गर्भ से जो प्रकट हुए देवकी नंदन है, और वहाँ गोकुल में जो प्रकट हुए तो यशोदा नंदन। तो यशोदा नंदन ब्रज में ही रहते हैं, और देवकी नंदन जो है मथुरा में, द्वारका में, हस्तिनापुर में जाते हैं। तो कृष्ण एक ही दो जगह प्रकट हुए, देवकी नंदन के रूप में और यशोदा नंदन के रूप में भी। तो वसुदेव जी जब अपने पुत्र को लेकर गए तो दोनों संयुक्त हो गए, देवकी नंदन और यशोदा नंदन ये कहीं है, दोनों फिर संयुक्त हो गए और जोग माया को लेकर वसुदेव जी चले गए। तो वही यशोदा नंदन हमेशा ब्रज में रहते, पदम एकम न गच्छति वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। यशोदा नंदन नंद नंदन श्री कृष्ण वो वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं, एक पैर भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, तो द्वारका में कैसे गए? संदेह होगा ना कि भाई द्वारका में राज प्रशासन किए, अंतिकापुरी में पढ़ने गए, हस्तिनापुर में अर्जुन के सारथी बने, तो फिर वृंदावन में कैसे? तो दो रूप में कार्य किए, ऐसे तो असंख्य रूप हैं, एको हम बहुत श्यामी। रासमंडल में तो हर गोपी के साथ हर कृष्ण एक कृष्ण थे, रास नृत्य में अपना कृष्ण विस्तार किए अनंत रूप में। तो ऐसे भगवान स्वयं कृष्ण यशोदा नंदन ब्रज में रहते हैं प्रछन्न रूप में, लेकिन जो बाहर जाते हैं देवकी कृष्ण जाते हैं, यह चार जो लोग लिखते हैं। इसलिए भगवान एक हैं और बहुत भी हैं, एक में भी अनेक हैं और अनेक में भी एक हैं। एको हम बहुश्यामी द्वितीयो नास्ति। भगवान देवकी के भी पुत्र हुए और यशोदा के भी हुए, और सारे गोपों के भी पुत्र बने, और सारे गायों के भी बछड़ा बन गए। नंद गोप कुमार आया, नंद गोप जब ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को चोरी करके ले गए तो उतने माताओं के पुत्र बन गए। केवल देवकी के ही पुत्र नहीं है, यशोदा के ही पुत्र नहीं है, जितनी वात्सल्यमयी माताएं थी उनके पुत्र बन गए। तब ब्रह्मा जी का चार ब्रह्म चक्र आ गया कि कौन सही है कौन असली है, ब्रह्म लोक में वो सही है कि ये सही है, वैसा ही लकुटी वैसा ही पीताम्बर वैसा ही चितवन वैसा ही हास, जिसका जैसा ड्रेस था वैसा हु बहु। तो जितने भी ग्वालों को चोरी करके ब्रह्मा जी ले गए उतने माताओं के पुत्र बन गए। तो केवल देवकी के ही पुत्र नहीं है, यशोदा की नहीं, जितनी ब्रज की माताएं वात्सल्यमयी थी पुत्रवती थी उन सबके पुत्र बन गए, और माताओं के नहीं गौओं के भी बछड़े बन गए, गौओं को भी वात्सल्य सुख प्रदान किए, उतनी गायों के बछड़े बनकर उनका स्तनपान किए, गायों का स्तनपान किए बछड़ा बनकर, माताओं का स्तनपान किए उनका पुत्र बनकर, सारे लताओं के ब्रज के तीर्ण तीर्ण को चखे हैं, जितने भी ब्रज के कण कण हैं उस पर उनका चरण विन्यास हुआ, जितने भी तीर्ण लता पद सबका स्वादन किए। तो कृष्ण एको हम बहुश्यामी, ब्रज में तो असंख्य ग्वाल बाल और बछड़े बन गए, और सब माताओं को और गौओं को भी वात्सल्य का सुख प्रदान किए, इसलिए एको हम बहुश्यामी द्वितीयो नास्ति। फिर भी भगवान ने कहे तो ब्रह्मा जी दोबारा देखने आए ब्रज में, दोबारा गए देखने तो वहां भी एजिटेज, कोई जेरोक्स मार लिया है, जेरोक्स कॉपी तो नहीं है, तो नहीं जेरोक्स नहीं है, हूबहु ओरिजिनल कॉपी बना दिए। तो ब्रह्मा जी दोबारा फिर आए ब्रह्म लोक से, तो ग्वाल बाल उनको कहे कि चार मुंह चमुहा आया है, ग्वाल बाल उनको लगे ये करने कि चौमुहा चार मुंह वाला आया है। तो जहां आए दोबारा जस्टिफाई करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए, तो जगह का नाम ही होगा चौमुहा। ग्वाल बाल कहे कि फिर चौमुहा आ गया, एक बार तो आया था चोरी करके ले गया, दोबारा आया देखने के लिए, तो फिर देखकर फिर ब्रह्म लोग फिर आए, तब ग्वाल बाल के कि फिर चौमुहा आ गया, मैंने चार मुंह वाला, जिसका चार ब्रेन है वो भी चकरा जाता है जानने में, तो हम लोग तो हमेशा चकराए हुए ही हैं, हम लोग कैसे जान सकते हैं। भगवान को जानने के लिए शिव ब्रह्मा आदि भी चकरा जाते हैं। भगवान की लीला अत्यंत विस्मयकारी, अत्यंत विडम्बनम, इसलिए लगता है कि भगवान कैसे यहाँ देवकी के यहाँ भी हुए और वहां भी हुए और वहां भी हुए, वो हर जगह हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, प्रत्येक वस्तु में भी हैं, परमात्मा से हर जगह व्याप्त हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रसाद का समय हो गया है। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की।